आज की बात।
आज की बात लेकर आपकी सभा में उपस्थित हैं कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज हमारी चर्चा का विषय है CAA और NRC पर क्या सच में भ्रांति है। हालिया दिनों में CAA और NRC पर काफी चर्चा हो रही है। बिल को कानून बनाने वाले कहते हैं कि सब कुछ ठीक है और भ्रांति फैलाई जा रही है, और विरोध करने वाले कहते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं। तो सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार सुन लेते हैं।
अभी हाल में जो संसद का सत्र समाप्त हुआ, उसमें दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़े बिल को तो हमने पारित किया, आपको अधिकार देने का निर्णय किया, उसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण बिल पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। भारत की संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा ने आपके उज्जवल भविष्य के लिए, दलित पीड़ित शोषितों के भविष्य के लिए, लोकसभा राज्यसभा ने, सभी सांसदों ने इस बिल को पास करने में मदद की है। आप खड़े होकर देश की संसद का सम्मान कीजिए, देश की पार्लियामेंट का सम्मान कीजिए, देश की लोकसभा का सम्मान कीजिए, देश की राज्यसभा का सम्मान कीजिए, देश की जनता ने चुने हुए हमारे सांसदों का सम्मान कीजिए, पूरी ताकत से सम्मान कीजिए। दोस्तों,
इस बिल को कानून बनाने वाले भारतीय गृह मंत्री ने भी भ्रांति फैलाने की बात की।
और कैसे कैसे मुद्दे पर राजनीति हो रही, कैसे कैसे मुद्दे पर। अभी हम एक बिल लेकर आए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। इसमें क्या प्रोविजन है? इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रोविजन है। और पूरा समूचा विपक्ष आज देश की जनता को गुमराह करने पर तुला है। मैंने संसद के अंदर कहा, आज फिर से कहने वाला हूं कि इस देश के किसी भी माइनॉरिटी की व्यक्ति की नागरिकता जाने का सवाल ही नहीं है। ये बिल में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। और जो वहां अत्याचार के चलते यहां आए, मेरे सिख भाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ईसाई है, हिंदू है, कहां जाए वो, कौन शरण देगा? और कांग्रेस पार्टी को तो मैं विशेष कर कहना चाहता हूं, ये नेहरू लियाकत समझौते का हिस्सा था जिसका 70 साल तक आपने पालन नहीं किया, क्योंकि आप वोट बैंक को बनाना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच में जो समझौता हुआ था उसका पालन आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है और लाखों करोड़ों लोगों को शरण देकर नागरिकता देने का काम किया। और मैं सभी विद्यार्थियों को भी कहना चाहता हूं कि इस बिल का अभ्यास करिए। आपके पास जो सूचना है वो ठीक नहीं है। ये बिल किसी की भी नागरिकता लेने के लिए कोई प्रावधान रखता ही नहीं है। किसी की नागरिकता, विशेषकर माइनॉरिटीज की, मुस्लिम भाइयों बहनों की नागरिकता कहीं नहीं जाने वाली है जो भारत के बासिंदे। और मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है करो, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार फर्म है, इस सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, वो भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ दुनिया के अंदर।
इस पर पहले वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी के विचार सुने।
इस वक्त देश में कैब जो अब CAA बन गया है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून अधिनियम, और NRC को लेकर तमाम तरह के झूठ उगले जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं जिनका न कोई सिर है न कोई पैर है। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त कही जा रही है इसको लेकर, जितने अब तक घटनाक्रम हुए हैं, जितने अब तक उपद्रव कहे जा रहे हैं या हिंसा कही जा रही है या टकराव कहा जा रहा है, जो भी उसको कहा जाए, मीडिया में जितने घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को लेकर भी एक अजीब तरह का माहौल बनाया जा रहा है समाज में। मैं बहुत साफ शब्दों में आज कहना चाहता हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों को नागवार गुजरे, कि हमारे देश में एक बड़ी ताकत, एक बड़ी सत्ता, कुछ बड़े ताकतवर किस्म के लोग इस मसले को भी हिंदू और मुसलमान बनाना चाहते हैं। ये हिंदू और मुसलमान का मामला है ही नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के एक प्रावधान को और उसकी भी एक लाइन को केवल आप छोड़ दें, अगर हमने पूरे एक्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ एक पहलू जो जोड़ा गया है जिसमें कुछ धर्मावलंबियों के नाम हैं और एक धर्मावलंबी यानी एक धार्मिक समुदाय का नाम नहीं है, अगर उस लाइन को अगर छोड़ दिया जाए, अगर पूरे एक्ट को आप एनालाइज करें और जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको लाया गया है उसको आप समझें, तो दरअसल ये मुसलमान का मामला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मामला है, ये पूरे संविधान का मामला है। ये मुसलमान के खिलाफ कानून नहीं है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ कानून है, ये हमारे संविधान के खिलाफ कानून है।
कन्हैया कुमार ने अपनी एक बातचीत में जो कुछ कहा वो भी सुनने योग्य है।
CAB और NRC को जब लोग अलग अलग करके देख रहे हैं तो वो कन्फ्यूज हो रहे हैं। दरअसल पूरा ये मामला शुरू हुआ है आसाम से। आसाम में इनका एक्सपेक्टेशन ये था कि ज्यादा मुस्लिमों का नाम आएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। 19 लाख में से लगभग 15 लाख जो है वो गैर मुस्लिम आए हैं। तो अब इनको लगा कि जब हम पूरे देश में NRC करेंगे तो ऐसे लोग तो करोड़ों लोग होंगे, तो इसमें अपनी वोट बैंक की राजनीति को कैसे साधा जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट को आधार बना करके इस देश में रह रहे लोगों को परेशान किया जाए। मुझे लगता है कि सरकार अगर अपनी इस डिवाइड एंड रूल और डाइवर्ट एंड रूल की पॉलिसी से बाहर नहीं आती है और अंग्रेजों की पॉलिटिक्स के द्वारा, अंग्रेजों के टेक्टिक्स के द्वारा अगर इस देश को डिवाइड करना बंद नहीं करती है, तो जितने भी संविधान से प्यार करने वाले लोग हैं, इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं, जो सिविलियंस के राइट को की बात करने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि कहीं भी हिंसा नहीं हो, ना कश्मीर में हिंसा हो, ना जामिया में हिंसा हो, ना गुवाहाटी में हिंसा हो, ना पटना में हिंसा हो, जो पीसफुल लोग हैं, जो पीस लवर लोग हैं, जो चाहते हैं कि सोसाइटी में इक्वलिटी हो, हमारा देश आगे बढ़े और वेलफेयर स्टेट में रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसकी चर्चा हो, राजनीति मुद्दा विहीन नहीं हो, राजनीति में किसानों की आत्महत्या की भी बात हो, वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे।
ममता बनर्जी ने कई समस्याओं और सच्चाइयों का उल्लेख किया है।
छुपा रुस्तम का माफी एक बिल ले आता है और जो भी आवाज तुलता है उसको एंटी नेशनल बोल देता है। हम एक देश का सिटीजन है, हम आजादी का लड़ाई का बाद जो देश को नागरिक बना, देश को सिटीजन बना, 70 साल में, 73 साल में आजादी का बाद हर आदमी ने वोट डाला, इसका बाद कितना गवर्नमेंट तैयार हुआ, कितना गवर्नमेंट चला गया। आप लोग भी आज BJP गवर्नमेंट में हो तो आपका वोट में है, हमारा वोट में है, हम नहीं दिया लेकिन कोई कोई दिया इसी के लिए। और आज आप कहते हैं कि वो नागरिक नहीं है, वो सिटीजन नहीं है, और सब खुश बैठिया है, सबको खुश बैठिया देखता है। आप पूछिए आप लोग क्या है। आजादी हुआ था 47 साल में, आपका पार्टी का जन्म कब हुआ था? 1980 में। आप आजादी में नहीं थे, आप गांधी जी का साथ नहीं थे, आप नेताजी का साथ नहीं थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ नहीं थे, अम्बेडकर के साथ नहीं थे, गुरु नानक को नहीं देखा, गुरु भगत सिंह को भी नहीं देखा, राजेंद्र प्रसाद को भी नहीं देखा। आज क्या 5 साल क्षमता में रहने का बाद आप तैयार करेंगे कौन देश का सिटीजन है और कौन नहीं है? आप कौन है? आप कौन है?
और अंत में असदुद्दीन ओवैसी की बातें भी सुन ले।
ये लड़ाई क्योंकि हिंदुस्तान की रूह को बचाने की लड़ाई है। जो काम अंबेडकर ने नहीं किया, जो काम सरदार पटेल ने नहीं किया, जो काम राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया, जो काम हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम नेहरू ने नहीं किया, जिस काम के बारे में गांधी ने नहीं सोचा, आज वो काम नरेंद्र मोदी की हुकूमत कर गई। मजहब के नाम पर देश को चलाना चाहते, शहरियत सिटीजनशिप मजहब के नाम पर देना चाहते। 75 साल के हो चुके और उनको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा बताने के लिए, सिर्फ एक शख्स की हिमाकत, उसकी अनानियत को खुश करने के लिए, उसकी अना की तस्कीन के लिए। जो लोग 75 साल 80 साल के वो लाइन में ठहरेंगे। मैं क्यों ठहरूं? मैं क्यों ठहर कर बताऊं कि मैं हिंदुस्तान का शहरी हूं? मैं पैदा हुआ इसी सरजमीन पर, मैं हिंदुस्तान का शहरी हूं। मगर हम तमाम को, हिंदुस्तान की 100 करोड़ आवाम को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। यह सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, यह तमाम हिंदुस्तानियों का मसला है। आप तमाम को जो नरेंद्र मोदी वजीर आजम को चाहते हैं, मैं उन मोदी भक्तों से भी कह रहा हूं कि तुमको भी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, तुमको भी डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा, तुमको भी एसएससी सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा, तुमको भी पासपोर्ट बताना पड़ेगा, तुमको भी तुम्हारे बाप दादा का सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा।
भारत एक गुलशन है जिसमें तरह तरह के फूल हैं और यही उसकी खूबसूरती है। इस खूबसूरती को खत्म करने की हर कोशिश आलोचनीय है।